अमर के इस तरीके से पूछने पर बॉडीगार्ड को जाने क्यों हंसी आ गई, क्योंकि वो जब से आई थी तब से देख पा रही थी कि जानवी और अमर एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक दूसरे के सामने वे कभी उसे जाहिर नहीं होने देते। उस बॉडीगार्ड ने अपना गला साफ करते हुए कहा, नहीं सर, मैडम ने खाना नहीं खाया था, वो पूरे वक्त आपके कमरे में ही थी। अमर ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और फिर उस बॉडीगार्ड को वहां से जाने का इशारा किया। खाना खाते वक्त अमर ने गुस्से में कहा, उसे क्या लगता है जितनी बार वो मुझसे नाराज होगी मैं उसे मनाने जाऊंगा, किसी अच्छे पति की तरह उसे खाना खिलाऊंगा? बिल्कुल नहीं, मैं भी देखता हूँ कितने दिनों तक भूखी रह सकती है, ये अकड़ जल्द निकल जाएगी। वहीं जानवी अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी और तकिए में मुंह छुपाए रो रही थी, तभी उसका फोन बज उठा। जानवी ने धीरे से घूमकर फोन पर फ्लैश होते नाम को देखा तो ये त्रिशा का कॉल था। जानवी जल्दी से बेड पर उठकर बैठ गई और कॉल पिकअप किया। उधर से त्रिशा ने कहा, कैसी हो जानवी, तुम्हें अमर ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहा है? त्रिशा के लहजे में नरमी जरूर थी, पर उसमें जानवी की फिक्र नहीं थी, बस वो ये जानना चाहती थी कि अमर और जानवी के रिश्ते में दरार तो आ रही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमर जानवी को रावत मेंशन से दूर ले जाकर उसका ख्याल रख रहा हो? जानवी ने जल्दी से आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ दी, मैं ठीक हूँ, और अमर इतना बुरा बर्ताव नहीं कर रहे हैं जितना वो करना चाहते हैं। ये सुनकर त्रिशा की मुठ्ठियाँ गुस्से में कस गईं और उसने शक भरे लहजे में कहा, कहीं तुमने ये तो नहीं बता दिया कि तुम ये सब नाटक कर रही हो? जानवी ने जल्दी से कहा, नहीं दी, मैं ऐसा नहीं बता सकती हूँ, अद्वैत यहाँ आता रहता है खबर लेने के लिए और मैं नहीं चाहती उसे जरा सा भी शक हो और आपकी जान मुसीबत में पड़ जाए। ये सुनकर त्रिशा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, प्लीज़ अमर को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम ये सब नाटक कर रही हो, वरना मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। जानवी ने धीरे से हूँ कहा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, आप बताइए, आप अब कैसा महसूस कर रही हैं और बाकी घर वाले कैसे हैं? दादाजी की तबीयत कैसी है? वो अपने रूटीन चेकअप पर जा रहे हैं ना? त्रिशा के माथे पर बल पड़ रहे थे ये जानकर कि जानवी को सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे परिवार की फिक्र है। उसने संजीदगी भरे लहजे में कहा, जानवी, तुम इन सब की फिक्र करना छोड़ दो, इनको मैं संभाल सकती हूँ, तुम बस अपना ख्याल रखो, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, समर्थ आता ही होगा। इतना बोलकर त्रिशा ने फ़ोन काट दिया। जानवी बस फोन को तब तक घूरती रही जब तक स्क्रीन ऑफ ना हो गई। उसके बाद उसने फोन को टेबल पर रखते हुए आंखें बंद करके हाथ जोड़ते हुए कहा, कृष्णा, प्लीज़ मुझे किसी भी तरह करके वो रिमोट दिलवा दो, मैं सबको परेशानी में नहीं देख पा रही हूँ। मुझे लगा था अमर मुझसे नफरत करेंगे, पर अब मुझे यकीन हो गया है अमर इस जन्म में मुझसे नफरत नहीं कर पाएंगे, और इस तरीके से उनको तिल तिल मरते हुए मैं नहीं देख पा रही हूँ। काश ये सब मेरे खत्म होने से खत्म हो पाता तो मैं वो भी कर लेती, क्योंकि ये बर्दाश्त करना अपनी मौत से भी बदतर लग रहा है मुझे। वहीं त्रिशा ने भी फोन काटते ही उसे सोफे पर फेंककर चिल्लाते हुए अपना हाथ वॉल से दे मारा। उसे गुस्सा आ रहा था जानवी के इस बिहेवियर पर। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम इतनी अच्छी नहीं हो सकती हो। समर्थ जो उसके लिए इवनिंग स्नैक्स लेकर आया था उसने आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हें थोड़ी देर पहले तो तुम ठीक थी, मुझे लगता है तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं, मेंटल हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ेगा तुम्हें। इतना बोलकर उसने अपने हाथ में पकड़ी चिप्स की प्लेट को टेबल पर रखा और फिर वापस कमरे के दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला, मैं चाहता हूँ एक बार हम मिस ब्यूटीफुल से मिलकर आएं, अगर आज डिनर पर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो आ सकती हो। त्रिशा ने जल्दी से समर्थ की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है जानवी से, ये जानने के बाद भी कि उसने तुम्हारी पत्नी के साथ क्या किया है? समर्थ ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी पत्नी से ही सीखा है, अगर किसी से प्यार करते हो तो खुलकर बोल देना चाहिए, जैसे तुम अमर भाई के बारे में मेरे सामने बोल सकती हो तो मैं क्यों नहीं बोल सकता? मुझे तो मिस ब्यूटीफुल से प्यार नहीं, सिर्फ हमदर्दी है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बुराई है, और तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम आराम से यहाँ भी रह सकती हो। वैसे भी पूरे दिन मेरे घर वालों का माइंड वॉश करती रहती हो, उन्हें जानवी के खिलाफ भड़काती रहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती ना अपनी छोटी बहन के खिलाफ सबके कान भरते हुए? त्रिशा ने गुस्से से कहा, अब तुम ज्यादा बोल रहे हो, मैं किसी के कान नहीं भरती हूँ, जो सच है सिर्फ वही बताती हूँ, जानवी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है और ये सच है। समर्थ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ चुके हैं, झूठ को बार बार चिल्लाकर बोलने से वो सच नहीं बन जाता है मिस त्रिशा मल्होत्रा, और मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मैं अपनी फीलिंग्स ऐसे इंसान पर वेस्ट नहीं कर सकता जिसका दिल इतना काला हो। इतना बोलकर समर्थ तेज कदमों से कमरे से बाहर चला गया और त्रिशा बस दांत पीसती रह गई। उसके पास समर्थ की बातों का कोई जवाब नहीं था, पर उसे जाने क्यों जानवी से हर बात पर जलन हो रही थी। अमर तो अमर, अब उसका पति भी जानवी को पसंद करता है, अद्वैत भी जानवी को पसंद करता है, उसने कल्याण सिंह और रजत के सामने भी जितनी बार जानवी को बुरा भला कहा है उन लोगों ने उसे डांट टपट कर चुप रहने को कहा है, क्योंकि वे अपनी बहू के खिलाफ कुछ नहीं सुन पा रहे हैं। शायद त्रिशा को अब समझ आ रहा था, अगर किसी इंसान का किरदार अच्छा हो तो उस पर चाहे कितने भी कीचड़ उछाल लो, पर उसका नाम गंदा नहीं कर सकती है। त्रिशा ने अपने खुले बालों को जूड़े में बांधते हुए गहरी सांस लेते हुए कहा, अब तुम सब देखना कैसे मैं एक एक को जानवी के खिलाफ करती हूँ। मैं भी देखती हूँ वो कितने दिन तक खुद को मजबूत रख पाती है। एक हद तक जाकर इंसान को सेल्फिश होना ही पड़ता है। मैं भी बहुत अच्छी थी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया था, पर मेरा अकेलापन मुझे सेल्फिश बना गया। और जानवी भी एक दिन बाकी सबको छोड़कर खुद की कद्र जरूर करेगी, जहाँ उसे सबसे पहले अपनी फिक्र होगी, अमर की या किसी घर वाले की नहीं। और मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। इतना बोलकर उसने एक नज़र उन स्नैक्स को देखा और फिर मुंह बिगाड़ते हुए बोली, पता नहीं क्यों ये समर्थ भी मेरी फिक्र करता रहता है सुबह शाम। कभी कॉफ़ी लेकर आता है, कभी स्नैक्स लेकर आता है, कभी ब्रेकफास्ट कर लो, कभी डिनर कर लो, मुझे ये सब भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मैं किसी के साथ अच्छी नहीं हूँ तो वो इंसान मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता है। इसके बाद त्रिशा नहाने के लिए बाथरूम में चली गई, क्योंकि उसे भी अमर को देखना था। जानवी के धोखे के बाद अमर क्या पहले जैसा है या फिर वो बदल गया है, और त्रिशा इस बात पर बहुत यकीन करती थी कि जब लोहा गर्म हो तो उसे पर हथौड़ा मार देना चाहिए। अमर अभी टूटा हुआ होगा और उसे संभालने के लिए त्रिशा को उसके आसपास रहना जरूरी है। इसके बाद अमर के दिल में त्रिशा के लिए जगह जरूर बन जाएगी।